Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Kunja Bihari, Radha Kunja Bihari Radhe. Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada.
हरे कृष्णा, श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की, श्री श्री गौर निताई की, श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा रानी की, राधा रानी महा आविर्भाव महा महोत्सव की, निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमारे साधना के जीवन में बहुत सारे कठिन प्रसंग आते हैं और बिना भक्तों की सहायता से हम उन कठिनाइयों से ऊपर नहीं उठ सकते। इसलिए बिना भक्तों की सहायता से हम शुद्ध भक्ति मार्ग में प्रगति नहीं कर सकते, जिसको हम सत्संग कहते हैं। और जो भक्ति के 64 अंगों का वर्णन रूप गोस्वामी ने किया है, उसमें जो 6 प्रमुख अंग हैं उनमें भी सबसे प्रमुख अंग सत्संग है, क्योंकि सत्संग के बाद ही हरिनाम प्राप्त होता है, इसलिए हरिनाम भी फर्स्ट नहीं है। सत्संग में ही भगवान के प्रति आसक्ति रुचि और भगवान नाम के प्रति आसक्ति रुचि प्राप्त होती है। बिना भक्तों के संग से हम भगवान नाम भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और प्राप्त कर दिया तो उसको रुचि भी प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा सोचना ही गलत है कि मैं एकांत भजन करूँगा, कोई नहीं आएगा वहाँ पर, मैं और भगवान रहेंगे, ये बहुत बड़ा इल्यूजन है, भ्रम है बड़ा। एकांत किर हरेर भक्तिर उत्पात एव ही कल्पत है, केवल ऐसे आध्यात्मिक उत्पात ही हो सकते हैं जब व्यक्ति एकांत भजन करने का सोचता है। प्रहलाद महाराज भी भागवत में बताते हैं कि मैं उन संतों को मानता हूँ जिनको साक्षात्कार हुआ है, और वो हिमालय की गुफाएं छोड़कर जहाँ जनता जी रही है वहाँ पर आते हैं, और अपने जो साक्षात्कार हो गए हैं वो साक्षात्कार लोगों को देते हैं। ये नहीं कि वो उधर ही रहते हैं गुफा में और वही अपने साक्षात्कार को अपने लिए उपयोग करते हैं। और वास्तविक साक्षात्कार हुआ है तो फिर वो लोगों के लिए जो नहीं जानते उसको, जिसके लिए जिनको उनकी ज़रूरत है, जो वैसे उसके क्या कहते हैं उसको उससे वंचित हैं, ऐसे लोगों को वो साक्षात्कार देना संतों का कर्तव्य है। और बिना संतों के होने से ये साक्षात्कार अनुभूतियाँ जो हैं वो किसी भक्त के पास पहुँच नहीं सकती हैं। तो ये सत्संग नाम की जो वस्तु है, ये श्रीमती राधा रानी की कृपा है हमारे ऊपर। सत्संग उनके कृपा के बिना नहीं हो सकता है। वही अपने अनन्य करुणा की वजह से ये सत्संग देने वाले भक्त हमारे लिए भेजते हैं। सो एक तरह से हम भगवान की तटस्थ शक्ति हैं। भगवान की तीन शक्तियां हैं, एक अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, और हम बीच में हैं उसके, तटस्थ। लेकिन वो तटस्थ शक्ति को भी अपने शक्ति का हिस्सा बनाकर हमारे लिए भेजती हैं। जिन्होंने तटस्थ शक्ति होते हुए अंतरंगा शक्ति का आश्रय ग्रहण करने की इच्छा की है और उसके लिए प्रयास किया है, उनको वो अपना बनाकर हमारे लिए भेजती हैं। और हम भी उसकी उनकी कृपा से अंतरंगा शक्ति का अनुभव करना आरंभ करते हैं। क्या कहते हैं भगवान, महात्मनस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृति माश्रिता। क्योंकि महात्मा जन दैवी प्रकृति यानी राधा रानी के आश्रय में रहते हैं, वो हमें भी उस आश्रय में खींचते हैं। इसलिए अल्टीमेटली सबका सार जो है ना, वो राधा रानी की कृपा है। जो भी हम अभी कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं करेंगे, जो करने में सफल हो रहे हैं, जिसमें यश मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो सारी चीज़ें उन्हीं के दिव्य योजना में हैं। और जितना हद तक राधा रानी की कृपा की जो योजना है उसमें हम सहमत हो जाएंगे, जूझेंगे नहीं उसके साथ में, समझ आपको है, टिल द डिग्री यू डोंट स्ट्रगल विद द प्लान ऑफ राधा रानी फॉर आवर प्योरिफिकेशन, तो हम अंतरंगा शक्ति में ही रहेंगे हमेशा, जैसे ये महात्मा रहते हैं। ये मत समझना कि ये केवल महात्माओं के लिए एक प्रोविजन है, महात्मा हम भी बन सकते हैं। महात्मा यानी क्या, सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तश्च दृढव्रतः। जो दृढ़ व्रत से भगवान के लिए हमेशा चिंतन करते रहते हैं, भगवान के ही ध्यान में रहते हैं, भगवान की ही सेवा करते रहते हैं, उनका तन मन धन चित्त आत्मा भावना सब भगवान के चरणों में रहती है, वही महात्मा है। कोई पॉलिटिशियन को महात्मा नाम दे तो महात्मा नहीं बन जाता है वो, महात्मा की व्याख्या भगवान ने की है। महात्मा जयंती ये सब जो विशेषण है या तो क्या पदवी उपाधि है, वो केवल संतों के लिए है, कोई राजनीति वाले लोगों के लिए नहीं है। कवि कर्णापुर नहीं सॉरी आनंद वृंदावन चंपू जो लिखा है ना, उस ऑथर ऑफ आनंद वृंदावन चंपू, हाँ एनीवे तो आनंद वृंदावन चंपू में लिखा है कि ये जयंती, एक श्लोक है पूरा, ये जयंती शब्द जो है वो केवल संतों के लिए भी नहीं लिखा है, केवल भगवान कृष्ण के लिए। और भगवान कृष्ण केवल परम पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के लिए और उनके अवतारों के लिए। एनीवेज, तो ये जो शुद्ध भक्ति का मार्ग है, शुद्ध भक्ति मार्ग, प्योर डिवोशनल सर्विस, इसका पूर्ण आधिपत्य जो है वो राधा रानी के पास है। शुद्ध भक्ति का आचरण यानी करना, उसको जीवन में उतारना, इसका मतलब यही है कि राधा रानी के चरणों का अनुगमन करना, टू फॉलो हर लोटस फीट इज एक्चुअली भक्ति। और राधा रानी के कृपा के बिना भक्ति में परिपूर्णता नहीं प्राप्त हो सकती। तो इसलिए कृष्ण भगवान उद्धव को 11वें स्कंद में बताते हैं कि कोई व्यक्ति होगा वो शायद गुह्यतम योग का पालन करता होगा, मिस्टिक योगा, या कोई व्यक्ति कर्मकांड में बहुत कुशल होगा, कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने में कुशल होगा, या और किसी प्रकार की तपस्या व्रत करता होगा। वो कहते हैं कि ये सारे तपस्या दान वेदांत वेदांत का ज्ञान कर्मकांड सिद्ध योगा ये सब व्यर्थ है, कहते वो, क्योंकि वो मुझे आकर्षित नहीं कर सकते हैं जितना शुद्ध भक्ति मुझे आकर्षित करती है। प्रबोधानंद जी सरस्वती कहते हैं कि जितने भी साधन हम करते हैं, जितने भी साधन, साधना में क्या क्या करते हैं, हम जप करते हैं और चार नियम पालन करते हैं, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, सेवा करते हैं और व्रत करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तुलसी पूजा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारा लंबा लिस्ट है उसके अंदर, वो सब कुछ वो शुद्ध भक्तिपूर्ण मार्ग के विषय में आता है। वो कहते हैं वो सारे सब कुछ चीज़ बेकार है एक राधा के नाम के सामने। एक राधा नाम का उच्चारण हरे जब हम कहते हैं तो सारे साधन तुच्छ हो जाते हैं, तुच्छ नहीं है वो, लेकिन राधा नाम हरे हरा राधा रानी का जो नाम है वो इतना श्रेष्ठ है कि वो महत्वपूर्ण वस्तु भी उसके सामने तुच्छ लगने लगती है। जैसे कि दीपक जो हम लगाते हैं ना रात के अंधेरे में, उसको बहुत प्रकाश देता है वो, एकदम अंधेरा होगा तो पूरा कमरा भी आप देख सकते हैं क्या क्या किधर किधर है, लेकिन एक बार सूरज आया तो क्या हो जाता है, ऐसे हजारों भी आप दीपक लगाएंगे तो भी वो नहीं के बराबर है, कोई अस्तित्व ही नहीं उनका, सूरज के सामने सब अस्तित्वहीन तेजहीन हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारा जप साधना सब बेकार है, तुच्छ है, लेकिन इनके नाम की शक्ति जो है वो इतनी पावरफुल है। ऐसे रूप गोस्वामी बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं। और कृष्ण कहते हैं जो वैसी साधना करता है, गुरुदेव बताते हैं कि वास्तविक साधना और जप का रहस्य क्या है। वास्तविक साधना यानी कि हमारा भगवान नाम में इतना मन लगा हुआ है और इतना हम उसको प्रेम से और रुचि से और आसक्ति से उच्चारण करते हैं, इतना उस चिंतन में रहते हैं कि उस चिंतन नाम चिंतन की वजह से हमारा जो दुनिया का व्यवहार है उससे हम एकदम विरक्त हो जाते हैं। करते हैं व्यवहार एक कर्तव्य के रूप में, कोई गृहस्थ है तो परिवार को देखना है, सब कुछ दिल लगा के करते हैं, लेकिन हृदय में उसके लिए एक ऐसे क्या कहते हैं तुच्छ भावना रहती है। जब भगवान नाम का जप हमारा उस हद तक होता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा भगवान नाम का जप सिद्ध हो गया। अगर हमारा दुनिया के प्रति जो व्यवहार है, भौतिक व्यवहार जो है, वो सारे व्यवहार जब हमको अंदर से तुच्छ लगने लगते हैं, हम करते दिल से हैं, ये समझ मत समझना कि तुच्छ लगते ही हम उसको छोड़ देंगे और भाग जाएंगे, हाँ उसको वर्कआउट वैराग्य कहते हैं, वैसा मार्केट वगैरह की बात नहीं कर रहे, कर्तव्य करते रहेंगे लेकिन दिल में उसके प्रति आसक्ति नहीं होगी, यानी बुद्धि से दुनिया के व्यवहार करते रहेंगे और हृदय से भगवान के विषय में कार्य करते रहेंगे। हम लोग क्या करते हैं, बुद्धि से भक्ति करते हैं, ऐसा क्यों, वो भगवान ऐसे क्यों, उनमें कितने गुण हैं, वो है कि नहीं है, ये बुद्धि के स्तर पर हम भगवत विषय में चर्चा करते हैं, और हृदय से इंद्रिय भोग का काम करते हैं, एकदम हृदय से कोई प्रश्न नहीं पूछते हैं। जब इंद्रिय भोग सामने आता है तो प्रश्न नहीं करते हैं, गल तो मिला था ना, आज क्यों दे रहे वापस, नहीं हमको निरंतर चाहिए वो हृदय से हम भाग लेते हैं। तो स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब क्या है, इसको स्विच करना है, स्वैप करना है, उसको हृदय देना है भगवान की भक्ति के लिए और बुद्धि देना है दुनिया के लिए, और समझ समझ सोच समझ के दुनियादारी का काम करना है, उस पर लिप्त नहीं होना है। और ये सारा रहस्य राधा रानी की कृपा में छुपा हुआ है, उनका आश्रय लेते ही ये सारे रहस्य भेद हो जाते हैं अपने आप ही, क्या महत्वपूर्ण है क्या महत्वपूर्ण नहीं है सबको समझ में आता है। कोई बड़ा पंडित होने की भी जरूरत नहीं है, हृदय से राधा रानी हमको अनुभूति देती है कि क्या स्पिरिचुअल है, क्या मटेरियल है, क्या भौतिक है, क्या आध्यात्मिक क्या है, दिव्य क्या है, और क्या लौकिक है, और क्या पारलौकिक है। ये सारी चीज अपने आप एक अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को भी हृदय में अनुभूति होने लगती है। हमारे कितने संत अपने महाराष्ट्र में जो थे वो अनपढ़ थे, जानते ना आप। हमारे गौर किशोर बाबा जी भी अंगूठा छापते, कुछ नहीं आता था उनको, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा था, लेकिन जो शास्त्र में अति पारंगत व्यक्ति थे, चलते फिरते वेद कहते थे उनको, भक्ति सिद्धांत जी सरस्वती ठाकुर, वो उनके शिष्य बने। क्योंकि वो कहते हैं कि इतना सारा ज्ञान मुझे है, उसका उपयोग क्या है, अगर वो ज्ञान का रूपांतर साक्षात्कार में नहीं हो सकता है, या साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति का आसरा नहीं है, तो सब ज्ञान एक बोझ की तरह है। जैसे डूबने वाले व्यक्ति के ऊपर अगर बहुत वजनदार मुकुट होगा ना, तो वो मुकुट जो उसका गौरव नहीं बढ़ाएगा, उसको और जल्दी डुबाएगा। हाँ, द ग्लोरियस क्राउन इज अ सिंकिंग सपोर्ट फॉर अ ड्राउनिंग पर्सन, आउटसाइड इज अ ग्लोरी। हाँ, क्या मुकुट पहन के राजा आ रहा है, समुद्र में रहेगा तो वो ज्यादा जल्दी डुबाएगा उसको। ज्ञान उसी प्रकार से, अगर वो ज्ञान का रूपांतर साक्षात्कार में नहीं होता है, तो वो ज्ञान और भौतिक संसार में डूबने के लिए सहायता करता है, उस ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं होता है। वॉट वी आर इंटरेस्टेड इन इज साक्षात्कार, रियलाइजेशन, और वो रियलाइजेशन का जो खाता है ना, उसकी स्वामिनी राधा रानी है। भक्तों को कितना साक्षात्कार आवश्यक है, किस स्थिति में, वो देती है। इसलिए सहारा जो है ना, वो सोच समझ के होना चाहिए, और सहारा लेने के बाद वो हृदय से लेना चाहिए। सहारा ढूंढने के पहले बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, एक बार ढूंढ लिया सही सहारा, फिर हृदय उसको अर्पण करना चाहिए, उस सहारे को। वो सहारा दिव्य होना चाहिए, कोई भौतिक दुनिया की वस्तु में सहारा लेना ही चाहिए। हमारा केवल एक ही सहारा है, वो है राधा और कृष्ण। और दुनिया का किसी वस्तु का सहारा हम लेते भी होंगे, लेकिन श्रद्धा उन पर रखते नहीं कि ये हमारा अंतिम सहारा है। हम जानते हैं कि हमारा जो अंतिम सहारा है, उसका ये एक ब्रांच है, ये वो भेज रही है अभी इस समय, लेकिन अंतिम सहारा जो है वो राधा और कृष्ण है। और बाकी वस्तुओं पर जो सहारा लेता है या मन में सोचता है कि ये मेरे सहारे हैं, उनको निश्चित रूप से डूबना है। क्या कहते हैं, सहारा लिया था जिस जिस का हमने, सहारा लिया था जिस जिस का हमने, वो सब डूबते रहे भंवर में बिचारे। दुनिया के भंवर में सब डूबते रहते हैं, जितना भी सहारा हम सोचते हैं एक एक करके सब नष्ट हो जाते हैं। एक ही सहारा है, वो है भगवान, भगवान नाम, और वो राधा रानी के माध्यम से प्राप्त होता है। भगवान का सहारा भी लेना इतना आसान नहीं कि आज आके ले लिया 9:10 में, ऐसा नहीं होता है। वो राधा रानी जब अनन्य कृपा से वो देंगी हमें, स्वीकार करेगी हमें, तब वो सहारा प्राप्त होता है, जब हृदय शुद्ध होता है, सरल होता है। तो राधाष्टमी इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमारा अंतिम सहारा है। श्री कृष्ण भी जिसको ठुकराते हैं, जैसे कि अश्वत्थामा, उसको भी राधा रानी ने आश्रय दिया है। सुना ना आपने कहानी, कल मैंने विस्तार में सुनाई वहां पर। इतना भयंकर पाप किया था अश्वत्थामा ने कि आज तक के इतिहास में श्री कृष्ण भगवान ने किसी को ऐसा शाप नहीं दिया है। एक तो श्री कृष्ण भगवान ने शाप दिया है, बहुत कम घटनाएं आती हैं, सबका उद्धार ही किया है। ऐसा एक व्यक्तिमत्व है अश्वत्थामा को श्री कृष्ण भगवान ने इतने भयंकर शाप दिए थे। ब्रह्मा शिव जी ने भी हाथ ऊपर कर लिए, भाई सॉरी हमारे पास मत आना, हमारे स्वामी ने आपको शाप दिया तो हम क्या कर सकते हैं, उसको काट नहीं सकते हम। ऐसे व्यक्ति को भी राधा रानी ने आश्रय दिया और उस वो शाप से मुक्त किया जो भगवान कृष्ण ने दिया था। इतनी शक्ति है उनके अंदर, उसका गर्व नहीं उनको, करुणा का प्रभाव इतना है, करुणा जो है उनकी वो इतनी क्या कहते हैं ओवरवेलमिंग, भाव विभोर करने वाली है कि उसके करुणा के वश वो ऐसे सोच नहीं रहे कि अच्छा ठीक है अभी मैं कृष्ण भगवान का दिया हुआ शाप काट दूंगी, मैं उनसे ज्यादा बलवान हूं, ये सोचकर नहीं कर रही। वो करुणा उनकी इतनी भावपूर्ण है, इतनी ओवरवेलमिंग है कि वो करुणा के प्रभाव से वो ऐसे अपराधियों को भी माफ कर देती है, शरण भी देती है, उद्धार भी करती है, आज अश्वत्थामा वहां पर शुद्ध भक्त बनकर संत बनकर अश्वत्थामा पिपासा वन में निवास कर रहे हैं, केवल इनकी करुणा की वजह से। क्योंकि इस ब्रह्मांड के जो बड़े बड़े देवता हैं उनके पास जा चुके थे वो, उन्होंने सबने कहा था कि सॉरी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, आपने काम ही ऐसा किया है, और वो भी काम करने के बाद क्रोध दिया है। क्रोध किसको हुआ है? वो कृष्ण भगवान को क्रोध हुआ है, आप बच नहीं सकते हैं, उन्होंने जघन्य काम किया है। तो ब्रह्मा जी ने फिर उनको थोड़ा सा सलाह दिया कि आप ट्राई करो जाके। तो बरसाना में जाके बैठे और पश्चाताप पूर्ण हृदय से उन्होंने पुकारा तो राजा रानी प्रकट हो गई और उनका जख्म हील कर दिया, दर्द को मिटा दिया, शुद्ध भक्ति का दान दिया और कहा कि अभी यहीं रहो, ब्रज का निवास भी दिया, सेवा भी दिया उसके बाद में कि इस वन की रक्षा करो, ये मेरा पिपासा वन है। तो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये जो करुणा का सागर है इसका विस्तार कहाँ तक है, उसकी गहराई कहाँ तक है, हम सोच नहीं सकते, ढूंढ नहीं सकते उसको। जैसे सागर में आप जाएंगे ढूंढेंगे इसका विस्तार कहाँ है, तो भी आप ढूंढ सकते हैं पृथ्वी में, लेकिन इनकी करुणा का सागर जो है उसका कोई था नहीं। तो कहते हैं कि भगवान बहुत शक्तिशाली है, लेकिन शुद्ध भक्ति जो है वो भगवान से भी शक्तिशाली, उसका प्रमाण है। भगवान तो भगवान है, लेकिन अर्जुन शुद्ध भक्ति करने वाले थे, शुद्ध भक्त थे, तो भगवान उसके सारथी बने, है ना। तो जो सबसे शक्तिमान है उनको भी वश करने वाली एक वस्तु है, वो है भक्ति। इसलिए भगवान कहते हैं गोपियों को, न पा रहे हम, मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता, आपका प्रेम, आपकी भक्ति, आपका लगाव, आपकी मेरे प्रति आसक्ति, सेवा भाव, ये मैं जो भी हूँ वो होने पर भी मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि आपके प्रेम के बराबर मैं कुछ आपको दे सकूँ इन रिटर्न। इसलिए आप जो कुछ कर रहे हो उसी में संतुष्ट रहो, विशेष करके राधा रानी को कहा है ये। गोपियाँ भी उसी भाव में हैं, लेकिन राधा रानी उस भाव का क्या है, चरम स्थान है, एपिटोम, कलश है, कलश उसका सर्वोच्च स्थान में राधा रानी उसी भाव में। उनके प्रेम और भक्ति के सामने कृष्ण भी हताश हो रहे हैं, मतलब दुखी नहीं हो रहे, लेकिन अपने आप को ऐसे कमजोर महसूस करते हैं वो कि क्या करूं मैं, सब दुनिया को मैं सब कुछ दे देता हूं, जो चाहे मांगते हैं लोग मैं दे देता रहूं, सब कुछ देने में समर्थ हूं, लेकिन गोपियों के सामने वो हार जाते हैं, कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। और बार बार उनके साथ में व्यवहार करते हुए हारना पसंद करते हैं। जो होली खेलने आते हैं ना वृंदावन में बरसाने में, तो वो होली के गेम में हारने के बाद में क्या गिफ्ट देना होता है, वो ऐसे बड़े बड़े बॉक्स भर के लेके जाते हैं पहले से ही। समझो आप जीतने के लिए जा रहे हैं तो आप खाली बॉक्स लेके जाएंगे ना कि भाई वहां से मिलेगा गिफ्ट, तो हम भर के लेके आएंगे नहीं। ये सारे उसको फगुआ कहते हैं, फगुआ, फगुआ यानी फागुन के महीने में जो उत्सव होता है उसमें हारने के बाद में क्या देना होता है उसको फगुआ कहते हैं। ये फगुए से अपने बक्से भर भर के नंदगांव से भर भर के निकलते हैं और जाके जानबूझ के वहां पर हार जाते हैं, पसंद करते हैं, योजना बना के हारते हैं। जैसे कोई माता पिता के साथ में उसका छोटा सा लड़का जो है, पुत्र जो है, वो कुश्ती खेलता है ना, हम लोग सब लोग खेले हैं अपने बचपन में बालों अपने पिताजी के साथ या बड़े भाई के साथ, तो बड़ा भाई क्या करता है, हार जाता है और हम उसको चितपट कर देते हैं, देखो बड़े भाई को मैंने हरा दिया, पापा को भी हरा दिया। और पापा को बड़ा आनंद आता है कि पापा मैं हार गया, है ना, मतलब पापा कहते हैं मैं हार गया, कितने आनंद की बात है। जिस पर हम प्रेम करते हैं उसके सामने, उसके प्रत्यक्ष, उसके समक्ष हारना भी एक आनंद का स्रोत है। और श्री कृष्ण भगवान इस आनंद को ओतप्रोत भाव में ले लेते हैं। इतनी शक्ति है शुद्ध भक्ति में जो भगवान को भी वश कर लेती है, जो किसी को भी प्राप्त नहीं है, अलभ्य है, वो दुर्गम है, इनके चरणों की नाखून से निकली हुई अनंत किरणों में से एक किरण भी किसी को नजर नहीं आती है, कोई योगी ध्यानी तपस्वी उसको पकड़ नहीं सकता है। वो व्यक्ति को कहते हैं ब्रजवासी लोग, गोपियां अपने बालों की वो लटकन में बांध के उनको घूमते हैं, सोच सकते हैं आप, मैया डंडा दिखा के डांटती है उसको और वो कांपते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, मत मारो मत मारो, वो डंडा नीचे रखो, पहले डंडा नीचे रखो, क्या है उस डंडे में और क्या है उस यशोदा माता में, जो साक्षात भय भी जिससे भयभीत है वो स्वयं कांप रहे हैं उस डंडे को देखकर। क्या डंडे में उसमें, इसने गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पे उठाया, वो डंडा क्या चीज है उनके सामने? लेकिन वो डंडा कौन उठा रही है उसके लिए उनका आदर है, उसके सामने नतमस्तक है वो यशोदा देवी जो वात्सल्य भाव में उनकी सेवा करती। ये हमारे भगवान का व्यक्तित्व है। सर्वशक्तिमान होने पर भी प्रेम भक्ति के सामने झुकना पसंद करते हो, प्रेम भक्ति करने वाले के हो जाते हैं, तालियां बजाते हैं गोपियां सब लोग, और ये ठुमक ठुमक के नाचते हैं, ऊपर से भिक्षा मांगते हैं, मक्खन दो, वो थोड़ा सा मक्खन देते हैं, वो खाते हैं, बोला और दो, नाचो, फिर तालियां बजाते हैं, फिर नाचते हैं वो। आप सोचो, परम भगवान है वो, गोलोकेश्वर वैकुंठनाथ है वो, सब सृष्टि के निर्माण करता है, हर चीज उनके नियंत्रण में है, हर पत्ता उनकी इच्छा के बिना नहीं हिलता है। वो ये गोपियों जो गाय चराती हैं गोबर में और गोमूत्र में घूमती रहती है, वो तालियां बजाते हैं और नाच रही है, ये सब शुद्ध भक्ति का प्रभाव है। और वो शुद्ध भक्ति पूर्ण जो भक्त हैं उनके साथ में ऐसे दिव्य प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए वो आते हैं। वो कहते हैं कि इन गोपियों के घर में चुरा कर छाछ पीने के लिए तो मैं वैकुंठ का ऐश्वर्य छोड़कर आया हूं। हाँ सोचिए कैसे हमारे भगवान, किसका नाम ले रहे हैं हम, उनका भाव क्या है समझना जरूरी है। तो हम बड़ी उनका भाव समझ में आएगा हमको, तो फिर हमें राधा रानी का आश्रय लेने में सहजता हो जाएगी, जो कठिनता है वो नष्ट हो जाएगी, आसानी से हम उनके चरणों का सहारा ले सकते हैं। जिनके चरणों का सहारा वो खुद भी लेना चाहते हैं, उनके चरणों पर अनंत बार गिरते हैं, याचना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अश्रु बहाते हैं, अपने अश्रुओं से हाँ पश्चाताप के या प्रेम के जिसी भी अश्रु से उनके चरण धोते हैं वो, और चरणों में आश्रय चाहते हैं। जो लिखने में जयदेव गोस्वामी को भी संकोच हो रहा है कि ये कैसे लिखूं मैं, वो कर रहे हैं स्वयं, और उन्होंने वो श्लोक पूरा किया जो लिखने को जयदेव जी को संकोच हो रहा था। ऐसे हमारे राधा रानी के चरण हैं, सुभग गौरी के गोरे पांव, सभी विश्व का आश्रय है, यहां तक कि विश्व के निर्माणकर्ता का भी आश्रय है। प्रभुपाद जी के पिताजी तो थे गौर मोहन डे, हमारे प्रभुपाद जी के पिताजी, तो वो कहते थे कि मेरे पिताजी शुद्ध भक्त थे भगवान के। वो रोज दोपहर को, उनका वस्त्र का दुकान था, कॉमन यू नो जैसे सामान्य व्यापारी थे वो, तो वो हर रोज दोपहर को घर पे भोजन करने को आते थे। आज तो हम लोग को लगेगा कि ये पिक्चर की कहानी है, ऐसा लगेगा अच्छे एक फिल्म निकालनी चाहिए, स्क्रिप्ट निकाल के, क्योंकि तो पिक्चर में क्या होता है बताइए आप, जो हम लोग नहीं कर सकते, नहीं देख सकते, वो हम पिक्चर में देखना चाहते हैं। व्हाट इज इम्पॉसिबल वी वॉन्ट टू सी यू सी इट हैपनिंग, दैट्स वाई पिक्चर इज देयर। कैसे सातवें माले से हीरा हीरो कूद रहा है, फिर उसके बाद में वहाँ से हीरोइन तीसरे माले से कूद रही है, और बीच में कैच करके उसको तीसरे माले पे लेके आ रहे हैं, ये सब पिक्चर में होता है, मतलब इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन आपको वो होना, आपको इच्छा है कि ऐसा भी हो सकता है जो देखना है वो ऐसा होते हुए, और ट्रिक सीन से उसको कर देते हैं। वो चलते हुए रेल पर कूद रहा है, वो उधर से फिर बस में कूद रहा है, और वहां से भी मोटरसाइकिल पे करके मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं। ऐसे ही ये कहानी है गौर मोहन डे की। तो वो रोज दोपहर तो रोज दोपहर को वो भोजन के लिए घर पे आते थे, और घर पे आने के पश्चात घर के बाहर जाकर पुकारते थे, कोई भूखा है, कोई भूखा है, आइए हमारे घर में भोजन कीजिए। और फिर कुछ साधु आते थे और उनको प्रेम से उनकी पत्नी अभयचरण की माता उनको भोजन खिलाती थी, और उनको भोजन खिलाने के बाद में वो अभय को लेके आते थे, प्रभुपाद जी का बचपन का नाम, और कहते इसको आशीर्वाद दो। क्या बोल रहे हैं, इसको विलायत भेजो, इसको बैरिस्टर बनाओ, इसको धनवान बनाओ, उसको सुंदर पत्नी प्राप्त हो, ये आशीर्वाद नहीं मांग रहे वो, जो सब हमारे माँ बाप, सब हमारी दुनिया के माँ बाप मांगते हैं। वो कहते हैं कि इसको राधा रानी का भक्त बनने का आशीर्वाद दो, प्लीज ब्लेस हिम सो ही बिकम्स अ डिवोटी ऑफ राधा रानी। ये सच्चा पिताजी है, बाकी सब पिताजी झूठे हैं, केवल यही सोचते हैं कि अच्छा होगा, अच्छा होगा, विलायत जाओ, बहुत कल्याण होगा, बहुत पैसा होगा, बहुत अच्छा होगा, डोंट वरी, हाँ जुग जुग जियो, है ना, हाँ बेटा जुग जुग जियो, खुश रहो। आपको पता है ये आशीर्वाद कितने खोखले हैं, पर जुग जुग कौन जीता है यहाँ पर, माँ ने भी आशीर्वाद दिया तो जुग जुग कौन जी सकता है, तो 50 60 70 साल जीना भी मुश्किल है, इधर जुग जुग जीने का सवाल ही नहीं उठता है। और केवल खुश रहो कहने से कोई खुशी मिल थोड़ी मिलती है। जिस दुनिया में दुख भरा हुआ उसमें हम जी रहे हैं तो खुशी कैसे मिलेगी इधर? जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तब तक खुशी कैसे मिल सकती है? नॉट पॉसिबल। आप कितना भी उछलो, उछल जाओ, अपने आप को कूदो, छलांग लगाओ, कुछ नहीं होगा। जब तक भक्तों के चरण कमल नहीं पकड़ते हम लोग और भक्ति में जीवन को अपना जीवन नहीं बनाते, तब तक ये सारे आशीर्वाद ऐसे हवा में ही घूमते रहते हैं, लहरों की तरह दिखने में अच्छे लगते हैं। वाह, ब्यूटीफुल सीन, लाभ नहीं ले सकते उसका। जब हृदय से हमारे माता पिता या हमारे हितचिंतक, हमारे पड़ोसी, हमारे मित्रगण अगर ये शुभ चिंतन करेंगे कि आपको भगवान की भक्ति प्राप्त हो, तो वो सच हो सकता है। अगर राधा रानी की इच्छा हो गई तो आपकी भी इच्छा उनसे मिल गई तो वो भक्त बन सकता है और का जीवन में सच्चे आनंद का अनुभव शुरू हो सकता है। इतने जंजाल में फंसे हुए हम लोग तो। गौर मोहन जी अपने पिता बालक के लिए अनंत बार लोगों को उन्होंने भोजन कराया, साधुओं को, और एक ही आशीर्वाद मांगा कि मेरा बेटा राधा रानी का भक्त बने। और क्योंकि वो स्वयं राधा रानी के भक्त थे, इसे देखिए आज प्रभुपाद जी ने क्या किया दुनिया में। हम लोग क्यों बैठे यहाँ पर अभी, कारण क्या उसका? उन्होंने जो कष्ट किया, मेहनत किया गुरु जी की आज्ञा पालन करने में, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे और यही बोल रहे हैं जो उन्होंने हमको सिखाया है, जो स्वयं उन्होंने किया, कितना बड़ा चमत्कार किया। क्योंकि उनके गुरु जी भी ऐसे ही थे, उसी प्रकार का भाव रखते थे, वही भाव उन्होंने स्वीकार किया, वही भाव लेकर वो पश्चिम जगत गए, वहां से इंडिया आए। हाँ, एक्चुअली दुर्भाग्य है भरा, यहाँ पर 30 साल कोशिश किया उन्होंने, कोई अनुयायी नहीं बना उनका, फिर विदेश गए, वहां से गोरे लोगों को भक्त बना के लेके आए, धड़ाधड़ सब चरणों में गिर गए उनके। हाँ, पहली बार जब आए ना फ्लाइट से उतर रहे थे तभी सब लोग दंडोत प्रणाम कर रहे थे, क्योंकि गोरी त्वचा के लोग भक्त बने ना, फिर कोई बड़ा महात्मा ही। वही बताया उन्होंने जो यहाँ पर 30 साल बता रहे थे, ये ना हमारी जो गेहूं हुई चमड़ी है ना उसके अंदर इतना अहंकार भरा हुआ है कि हम जानते हैं सब कुछ, हम भारतवंशी हैं, हम राम कृष्ण को बचपन से पहली सांस से जानते हैं, जब से पहले सांस लिया है, पहली धड़कन चली है, तब से हम राम कृष्ण को जानते हैं। लेकिन जब ये देखा चमत्कार तो यहाँ के लोग भक्त बने और आज भारत में फिर उसका प्रचार जोरदार हो रहा है। एनीवेज, तो ये सब बातें समझना बहुत जरूरी है, बहुत बेसिक बातें हैं ये। लेकिन जब तब ABCD जब हम लोग फिक्स नहीं सीखते ना तो हम आगे PhD नहीं कर सकते, सब PhD बेकार है हमारी, जब तक हमको ABCD फिक्स समझ में नहीं आया। यहाँ तक कि क्रिकेट में भी कोई स्कोर नहीं करता है ना तो बाद में वो अपने टीचर के पास जाता है, शिक्षक के पास, कोच के पास, तो क्या करते मालूम है, वो पहले उसको क्रीज पे खड़ा रहना सिखाते हैं, कैसे पैर रखे, कितना अंतर रखे, कहाँ खड़ा रहना है। सर मैं इतना बड़ा बैट्समैन, मुझे कुछ सिखा रहे हो? नहीं, यही तो प्रॉब्लम है, आपका स्टैंड ही गलत है। वो इतना बेसिक चीज में जाते हैं तभी जाकर वापस स्कोर करने लगते हैं। उसी तरह से ABCD हमारा क्या है, भगवान नाम का जप है, भक्तों का संग है, वो जब तक ठीक नहीं तब तक फिर आगे की वो PhD की बातें करने की जरूरत ही क्या है। तो समय बहुत कम है, फिर भी राधा रानी के जन्म के समय पे एक अद्भुत घटना हुई थी जिसकी चर्चा कहीं होती नहीं है, वो मैं बताऊंगा आपको। राधा रानी का जन्म होता है ना तभी उधर रावल में, बाय द वे राधा रानी का जन्म जो है वो कल्प भेद के अनुसार कई जगह पर हुआ है, रावल में हुआ है, बरसाने में हुआ है, वृषभानु कुंड जो है, प्रिया कुंड, पीली पोखर उधर हुआ है, उधर एक पहाड़ पे एक पेड़ है उसके नीचे भी हुआ है, बहुत जगह पर हुआ है कल्प भेद के अनुसार। एनीवेज, सो जब रावल में उनका जन्म हुआ इसी हमारे कल्प में, तो उनकी जो राधा रानी की माता है कीर्ति देवी, उनकी माता का नाम क्या है, मुखाराई, मुखाराई देवी, इंदुसेन गोप की पत्नी है वो, और वो उनका गांव जो है वो राधा कुंड के पास में है, 2-4 किलोमीटर दूर है, मुखारा, मुखारा गांव, नहीं मुखाराई गांव है, माता का नाम मुखारा देवी है। तो ये सब बड़े बड़े हो गए थे बहुत, वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी बहुत उम्र के हो गए थे फिर भी बालक नहीं हो रहा था उनको, तो आप सोच सकते हैं उनकी माता का उम्र कितनी होगी। वो तो बहुत बुढ़ी थी लेकिन बड़ी व्याकुल थी कि मुझे 4 कन्याएं हैं लेकिन मेरी बेटी को एक भी कन्या पुत्र नहीं है। तो फिर जब राधा रानी का जन्म हुआ ना तो ये अपने गांव में थी और वो गोकुल में थे, मतलब गोकुल रावल में थे। तो जब से खबर मिली कि मेरी कन्या को कन्या हो गई, वो इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी बूढ़ी औरत जो है वो भाग के अपने बाहर आई, वो ऐसे पागलों की तरह नृत्य करने लगी, यहाँ वहाँ देखने लगी और ऐसे नृत्य करने लगी जैसे कैसे कोई सब भ्रमित हो गया पूरा, होता ना कि हम लोग ब्रज में कैसे बोलते हैं बावड़ी है गई तो वो ऐसे बावड़ी होकर नाच कर रही है, उसमें उसको बैलगाड़ी का एक निकाला हुआ पहिया दिखता है, तो इतनी बुढ़ी औरत है ना, सहजता से उसको उठाती है और ऐसे हाथ में गोल गोल घुमाने लगती है ऐसे। हाँ, फिर कुछ देर बाद उस क्या करती है, दीपक लेती है और वो दीपक सब उसके आरे पर लगाते हैं ऐसे स्पोक्स के ऊपर, और फिर वो जलते हुए दीपक उस बैलगाड़ी के पहिए पर रखकर हाथ से उठाकर उसको हवा में गोल 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 घुमाते हैं। आपने नृत्य कभी देखा है? बहुत अद्भुत नृत्य होता है वो, ऐसे ऐसे घुमाते हैं उसको गोल गोल गोल। तो उनको देखकर सारी गोपियां प्रेरित हो गई, उन्होंने भी अपने बैलगाड़ी के जो पहिए थे उसको निकाले उस पर दीपक लगाए और उसको लेकर घुमाया आकाश में, सब लोग नृत्य कर रहे हैं। उसका नाम क्या है? चरकुला नृत्य, चक्र से बनाया हुआ। आज के तारीख में ब्रज के जो धरोहर है, इतिहास ब्रज का, सांस्कृतिक इतिहास, उसमें चरकुला नृत्य बहुत फेमस है और ब्रज में आज भी उसकी प्रतियोगिताएं, स्पर्धाएं, प्रदर्शन चलते रहता है। बड़े बड़े उत्सव के उपलक्ष्य में सब युवा युवतियां जो हैं वो चरकुला नृत्य करती हैं। नेशनल कॉम्पिटिशन भी होता है उसका, चरकुला नृत्य की अकेडमी भी है वहाँ पर। ये कभी हुआ था चरकुला नृत्य का जो उत्सव, वो कभी हुआ था? और राधा रानी के जन्मदिन के ऊपर उसका उद्घाटन हुआ था, वो भी मुखारा गांव में हुआ था। तो एक जहां पर यहाँ पर बधाई बज रहे, बधाई बनाई जा रही है, विश्वानु बाबा सब धन लुटा रहे हैं, सब लोग मग्न है, और वहां पर चरकुला नृत्य हो रहा है। ओके क्या कहा जाए, कोई बात नहीं, लाभ की बात होनी चाहिए। हाँ, राधा रानी का जो तोता है ना शुक, उसका नाम है लीला शुक, वो एक दिन कृष्ण के पास आता है और राधा रानी का गौरव शुरू करता है। राधा रानी अपने कृष्ण अपने उंगली पर लेते हैं और वो गौरव सुनते रहते हैं। उतने में ललिता विशाखा आती है, क्योंकि हमारा तोता वापस दो। तो कहते मैं क्यों दूँ आपको, उसको बुला लो, देखो आता है कि नहीं आता है, आया तो ले जाओ, मुझे क्या है, मैं नहीं दूंगा उसको आप। तो वो तोते को बुलाते हैं, तोता देखता ही नहीं है और कृष्ण से ही बातें करते रहते हैं। फिर ललिता विशाखा जाके यशोदा से कंप्लेंट करती है कि जो भी हमारी चीज़ लेता है वो वापस ही तक देता नहीं है। तो कन्हैया माँ को कहते हैं मैं कहाँ नहीं दे रहा हूँ, मैं बोल रहा बुला लो और ले जाओ। तो उनके सामने बुलाती है, फिर भी तोता जाता नहीं है। ऐसे हमारे कृष्ण हैं, उनके पास में कोई वस्तु पहुंचती है तो वहां से छूट नहीं सकती वो, ऐसा गोंद गोंद लगा देते हैं उसको। कोई भाग्यवान जीव होगा उनके पास पहुंच गया तो फिर वो छोड़ते नहीं उसको। एक तो किसी भी आसानी से पकड़ते नहीं किसको, जैसे पूतना थी ना, एक तो किसी को इतना आसानी से पकड़ते नहीं है, लेकिन वह पकड़ा ना फिर छोड़ते नहीं है। उसका एक बार स्तनाग्र पकड़ लिया उन्होंने, वो छोड़ 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 बोल रही है, वो कहाँ छोड़ रहे हैं उसको, छोड़ ही नहीं रहे, पूरा दूध और कालकूट विष और उसके प्राण सब उसका सब कुछ छीन लिया उन्होंने, उसको अपना बना लिया, पूरा धात्री बना दिया, सेविका बना दिया। तो ये शुक जो है वो जब भगवान और राधा रानी और कृष्ण जो है अपनी लीलाओं को संपन्न करके जब गौलोक धाम वापस जा रहे थे, तो ये इसको भी ले जाने की इच्छा थी उनके साथ, लेकिन उसको एक अद्भुत ऑर्डर मिली, आज्ञा कि आपको यही रहना है। तो बड़ा नाराज़ था वो, जाने की इच्छा नहीं थी उसको, इधर रहने की इच्छा नहीं थी, जाने की इच्छा थी, लेकिन सब गौलोक जो ब्रजवासी होते हैं वो सब आज्ञाकारी होते हैं, वो भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा से ऊपर मानते हैं। तो भगवान की इच्छा सिर साबंध मानकर उन्होंने वहाँ पर रहना, उन्होंने कहा कि आप मैं क्या करूँगा यार रह के। तो राधा रानी ने कहा कि हमारी जो लीलाएँ हैं उसका गुणगान करो आप। तो कहते अगर आपकी लीलाओं का गुणगान करना है तो आप क्या सोचेंगे, अरे तो वो तो राधा रानी के साथ ही रहता है हमेशा, प्रत्यक्ष देख रहा है सब कुछ, इज इट नॉट लॉजिकल। जिस व्यक्ति ने राधा कृष्ण के संग रहकर निकटतम अवस्था में सारी उत्कट लीलाओं का अवलोकन किया है उसका भाव क्या है, देखो आप सोचो जरा, बहुत सोचने जैसा विषय है। उसका भाव क्या है, मतलब किसी महात्मा से मुझे आपकी लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, तब मैं उसको दुनिया में प्रचार करने के योग्य हो जाऊंगा। आप सोच सकते हैं कितनी नम्रता है ब्रजवासियों के अंदर। ये तो एक तोता है, बाकी ग्वाल बाल गोपियां अलग है, नम्रता उनका साही भाव है, कोई गर्व ही नहीं है। हाँ 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 मैं कर दूंगा, आपने कहा ना मैं कर दूंगा, मैं सब जानता हूँ, ऐसा नहीं। राधा रानी को बता रहे हैं वो, राधा रानी को आदेश मतलब आदेश शक्ति भी आती है उसके अंदर, पूरी पोटेंसी भी आ जाती है। वो राधा रानी आदेश दे रही है उनको, कह रहे हैं कि हमें आपके किसी महान भक्त के मुख से आपकी लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। तो फिर वो नम्र शुकदेव लीला शुक थे, वो सीधे कैलाश चले गए और वहां पर पार्वती देवी को ये शंकर भगवान भागवत सुना रहे थे। तो वहां पर जाके पेड़ पे बैठ गए गुप्त रूप से और पार्वती देवी सुन रही है। और आप जानते हैं ना भागवत में बीच में तृतीय स्कंद में पंचम स्कंद में बीच में बहुत बड़ी फिलॉसफी आती है, बहुत लंबी चौड़ी, प्रथम स्कंद में भी आती है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको स्किप कर देते हैं, लीला सुनना है हमको लीला। तो पार्वती देवी को जब तत्व ज्ञान का वर्णन हो रहा था थोड़ा सा झपकी लग गई उनको। और शिवजी महाराज कैसे हैं, आंख बंद करके मग्न होकर लीला कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। तो उनका प्रेरणा क्या है, वो हाँ हाँ करके बोल रही है, वो कान से सुन रहे हैं, आंख बंद करके बोल रहे हैं, वो पूरा भागवत समाप्त हो जाता है। तब वो आंख खोलते हैं तो पार्वती कहती है, ओ स्वामी माफ करना मुझे, मैं तो बीच में सो गई थी, मैंने सुना ही नहीं। तो क्या कह रही हो, मैंने पूरा भागवत तो आपके हाँ हाँ सुनकर तो किया मैंने भागवत पूरा, तो फिर आप सो रहे तो क्यों, कौन हाँ हाँ कर रहा था? तो मुझे पता नहीं, मैं तो सो रही थी। तो यहां वहां देखते तो पेड़ पर तोता बैठा हुआ है, तो यही तोता है। शंकर भगवान लीला में क्या कह रहे हैं उनको कि ये भागवत जो है मनुष्य जाति के लिए है, और जो मनुष्य भागवत का श्रवण करता है वो जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो जाता है, कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम भक्ति प्राप्त करता है। तो तोता कैसे बीच में आ गया, त्रिशूल लेके उसके भागे पीछे उसके। तो बेचारा वो जान की बचाने के लिए भागा उधर से, हिमालय में डोल रहा है इधर उधर, तो सीधा व्यास देव की गुफा कहां पर है, व्यासदेव का घर कहां है, व्यास आश्रम बद्रिकाश्रम, वो मानव जाति के जाने की क्षमता के परे है वो हिमालय में, वहां पर व्यासदेव जी अपनी पत्नी के लिए भागवत कर रहे हैं। वहां जाके तुरंत उनकी पत्नी ऐसे आ करके भागवत सुन रही है, एकदम स्टंड होकर पूरे तन मन लगाकर शुद्ध बुद्ध खोकर भूलकर वो भागवत सुन रही है। तो इसके मुंह में प्रवेश करते हैं सीधा, ये त्रिशूल लेके भाग के आ रहे हैं। तो व्यासदेव जी कह रहे हैं, अरे आपके मुख से भागवत उन्होंने सुना तो मुक्त हो गया वो, अभी वे त्रिशूल लेकर क्या फायदा है, शांत हो जाइए आप, आपके मुख से भागवत सुना है उसने तो वो तो उसका उद्धार हो गया पूरा। तो शिवजी त्रिशूल लेकर वापस चले गए और ये व्यासदेव की माता के मुख से प्रवेश करके उसके गर्भ में जाके बैठे, उसका गर्भ बने, 16 साल गर्भ में रहे उसके, क्योंकि राधा रानी के वो शुक थे ना, वो दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं था उसको, दुनियादारी में त्रिगुणों के अंदर पढ़ने में या उसको दुनिया के कार्यक्रम में कोई रुचि नहीं थी, उनको लगा कि दुनिया में कौन आएगा बाहर। लेकिन फिर सुखदेव जी को मतलब जो अंदर बैठे हुए हैं उनको व्यासदेव जी ने दोबारा भागवत सुनाया, एक बार तो वहां सुना था ना शिव जी से, दूसरे बार उनको सुनाया, तभी वो उनको लगा कि हाँ इस दुनिया में बाहर आने लायक कुछ चीज़ है भगवान की प्रेम भक्ति, तो मैं आता हूँ। वो बाहर आते ही इतने सिद्ध महात्मा थे वो, पहले से ऐसे ही निकल गए सीधे स्ट्रेट, पिताजी भाग रहे उसके पीछे, बेटा रुको बेटा रुको, बोले कहाँ रुक रहे, वो चले गए, उसको कोई आसक्ति वासक्ति है ही नहीं कुछ। तो क्या हुआ, उधर बीच में रुक गए अचानक, क्योंकि कुछ बच्चे ना दशम स्कंद के कुछ सुंदर श्लोक बोल रहे थे, लकड़ियां तोड़ रहे थे और वो श्लोक बोल रहे, बरहा पीड़म नटवर बप, वो श्लोकों का गायन कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान कैसे हाँ मोर पंख धारण करके बंसुरी लेकर डोल रहे हैं, पीताम्बर धारण किए हुए हैं वगैरह वगैरह सुंदर वर्णन की, रात में वो लकड़ी तोड़ रहे हैं तो रुक जाते हैं, वो आकर्षित हो जाते हैं, कहते हैं कि ये कहाँ सीखा आपने, तो कहते हैं हमारे गुरु ने सिखाया हमको, तो क्या मैं आपको गुरु को मिल सकता हूँ, चलो। तो फिर वो लकड़ियाँ समेट के वो बच्चे उनको कहाँ लेके आते हैं, व्यास देव के आश्रम में लेके आते हैं, कहते हैं ये हमारे गुरु हैं। तो फिर व्यास देव उनको दोबारा भागवत सिखाते, कितनी बार भागवत हो गया, तीसरी बार भागवत हो गया। और वो सुखदेव जी हैं जिन्होंने ऐसे बोलते ना मराठी क्या बोलते हैं, कोळून पहले कोळून पूरा सार ग्रहण किया उन्होंने भागवत का, वो भी शंकर जी और व्यासदेव जैसे लोगों के मुख से इतने प्रेम से बताया गया। तो ये सुखदेव जी, उनको राधा रानी पर इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, इतनी आसक्ति थी कि उनको खुद को ही पता था कि मैं राधा रानी का नाम लूंगा तो 6 महीने तक मूर्छित हो जाऊंगा, ये उनको खुद को पता था। लेकिन क्या हम देख रहे हैं इसके अंदर, जो करुणा है ना उनके अंदर, वो उनके भाव, उनका जो निजी भाव है उससे ज्यादा प्रभावशाली है उनके ही अंदर। हम लोग अपने अपने भाव में प्राप्त होगा तो भाव में लीन होना, आनंद लेना पसंद करेंगे कि इतना मजा आ रहा है उसके अंदर ना। लेकिन अगर मुझे भाव में, मेरे भाव में आनंद आने वाला है, लेकिन मैं अगर भाव में लिप्त हो गया तो सामने वाले का कल्याण नहीं हो सकता है, ये ज्यादा परेशानी है उनके लिए। बोले भाव को रखो बाजू में, पहले सामने वाले का कल्याण करो, बाद में देखा जाएगा भाव में कितना लिप्त होना है। बट करुणा इज नंबर वन। हाँ, किसी पर करुणा करना उनके लिए नंबर वन है। तो सुखदेव जी ने, इतना राधारानी पर प्रेम था उनका, इतनी कृपा थी उन पर कि नाम उच्चारण करने का आरंभ करने से ही वो 6 महीने मूर्छित होने वाले थे, हो सकते थे, तो उन्होंने उनका नाम ही नहीं लिया परीक्षित के ऊपर करुणावश। किसके पास समय तो है ही नहीं, केवल 7 दिन का ही समय है। ये तो कहता है 6 महीने के बाद मैं आना दोबारा सुनाऊंगा आपको, ऐसा नहीं है ना। लेकिन तो अपने भाव को बाजू में रखे। जैसे वो कुछ स्त्रियां होती ना, वो अपने सौंदर्य को ढक देती है और थोड़ा सा ही, तो कहते हैं हाफ कवर्ड ब्यूटी इज मोर इंटरेस्टिंग देन फुल्ली ओपन ब्यूटी। समझ में आपके आपको आया? जितना सौंदर्य को औरतें छिपाती है ना, उतना वो कुतूहल बढ़ता है लोगों का, क्या सौंदर्य होगा इनके अंदर। और जो सब कुछ खोल के घूमते हैं उनके पास फिर कोई देखता नहीं है, सब रहस्य तो खुल गया, अभी क्या देखना है। तो श्रीमद् भागवत ऐसे सुंदर स्त्री की तरह है, शुद्ध भक्ति नामक सुंदर स्त्री की तरह है, जिसको उन्होंने राधा रानी का नाम लेकर ना लेकर धक्के रखा हुआ है, विच इज क्रिएटिंग मोर एंड मोर इंटरेस्ट एंड कुतूहल अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। और उनका नाम ना लेते हुए भी सारा चीज उनके बारे में बताया उन्होंने, उनका मतितार्थ जो है, राधा रानी के जीवन का सार क्या है, राधा रानी के कार्यकलापों का सार क्या है, व्हाट इज द एसेंस ऑफ हर एग्जिस्टेंस, एक्टिविटी, पर्पज, वो सारा उन्होंने उनका नाम लिए बिना सब वर्णन कर दिया। यानी कि सब कुछ बताया, लेकिन वो नहीं किया जिससे वो 6 महीने बेहोश हो सकते थे सामने वाले व्यक्ति के कल्याण को देखते हुए। अभी राधा रानी के शुक में अगर इतनी करुणा है तो राधा रानी में कितनी करुणा होगी, आप सोच सकते हैं। वो तो उनके भक्त हैं, ऐसे अनंत भक्तों जैसे ही भक्त हैं। लेकिन वो अपनी स्वामिनी का वो गुण जो है ना, वो प्रचुर परिपूर्ण मात्रा में श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट कर रहे हैं हमारे लिए। उनका भागवत कहना, उनका राधा रानी का नाम ना लेना, 6 महीने बेहोश न होना, और पूरा सार 7 दिन में बुद्धि पूरी परिपूर्णता से परीक्षित महाराज जैसे महान आत्मा को संपृक्त मात्रा में, योग्य मात्रा में दे देना, ये सुखदेव जी की करुणा का एक प्रमाण है। और उनकी करुणा इनकी करुणा का भी एक सैंपल है। तो बाकी तो राधा रानी में बहुत सारे गुण हैं जो कृष्ण को आकर्षित करते हैं, कृष्ण को लिप्त करते हैं, वश में करते हैं, लेकिन हमारे लिए जो काम की बात है ना, वो करुणा है उनकी। उससे अगर हम लिंक हो गए तो फिर हमारा बेड़ा पार हो सकता है। इसलिए मन याद कर राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी महामंत्र के माध्यम से वो करुणा के सागर से हम कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल। समय कम है, नहीं तो बहुत सारा लिखे लाया था मैं, कोई बात नहीं, समय कम भी है, समय अनंत भी है, आगे भी मौके आएंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।